रमदास में वहां से ये सतनाम और सार शब्द की शक्ति लेकर चला, अपने को छुपाते हुए और उस अज्ञान आत्मा में अपना प्रवेश करने के लिए शुरुआत करते हैं। फिर धर्मदास मैं बताऊं कहां आया, मैं वहां पर आया जहां पर 100,000 जीवों को और ये काल बलि भून रहा था, तपस्या पर जल रहे थे। काल भगवान को मालूम होता है कि जब ये प्राणी बिल्कुल इनमें से वो अंश निकल जाएगा उसके बाद वो तपस्या से उड़ जाते हैं। वहां से उड़कर वो प्राणी कहां जाते हैं, अपने अपने कर्म के आधार पर, फिर दंड अपने कर्म के आधार पर, अपने कर्म भोग के लिए न्यायाधीश यानी धर्मराय, जो भगवान ब्रह्म ने ज्योत निरंजन ने एक न्यायाधीश एक धर्मराज बना रखा है उसके पास जाते हैं। वहां फिर कर्मों के आधार पर किसी को अच्छे कर्म है स्वर्ग भेज देगा और जिसके माड़े कर्म उनको नरक, फिर 84,00,000 जोनियों में ऐसे इनकी फिर ये दुर्गति शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट डे अगले दिन 100,000 का फिर आहार, ऐसे ये प्रक्रिया रोज चले। तो धर्मदास जब मैं वहां पर आया तो सभी प्राणी उस आग की जलन से ऐसे बुरी तरह तड़प रहे, हाहाकार मचा रहे हैं और कह रहे हैं कोई परमात्मा है सर्वशक्तिमान है तो हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ भगवान। वहां पर ऋषि लोग भी कहते हैं मैंने 1,000 वर्ष साधना की भगवान की, मुझे क्या आडे आया, आज मुझे क्या लाभ हुआ है मालिक, ये क्या बनी मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या जुल्म किया दाता जो मुझे ऐसी सजा दी जा रही है। कोई कहता मैंने चारों वेदों को कंठस्थ याद किया, रोज स्वाध्याय करता था। कोई कहता मैं गीता पढ़ता था प्रतिदिन और फिर भी मैं तपस्या पे, मैं क्यों भूना जा रहा हूं, मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास मैं वहां जब पहुंचा साहेब की कृपा से, परम पिता की कृपा से, सतपुरुष की कृपा से, अपने से नहीं कह रहे, वो स्वयं लीलाधारी मालिक थे, कुल परमात्मा थे। कहते हैं जब वहां पहुंचा उस तपस्या के ऊपर तो धर्मदास उस शब्द की कृपा ते शक्ति की कृपा से यानी मेरी शक्ति ते उनकी वो जलन निष्क्रिय होगी, वो टुकड़ी तो दहक रही है, वो तो यों की यों गर्म नजर आ रही है लेकिन उन जीवों को वो गर्म नहीं लग रही, साहिब की कृपा ते कबीर साहिब की रजा ते। जब उनको जलन होना बंद हुआ तो वो होश में आते हैं और मेरे को जब सामने देखें और देखकर कहते हैं हे परमात्मा आप कौन हैं, बड़ा तेज कर इसको कहते हैं ये मालिक आप कौन हैं और हम यहां किस कर्म का भोग भोग रहे हैं। वहां पर कबीर साहब कहते हैं भाई ये तो बिना कर्म का भोग तुम्हें प्राप्त है, ये कोई कर्म का दंड नहीं है, ये बिना कर्म का है। तुम जिस भगवान की साधना करते थे निराकार कह के, वहां पर हिंदू और मुसलमान ये इकट्ठे ही होते हैं, सिख और ईसाई, जिनकी सत साधना नहीं है, तो वहां सभी कहते हैं कि मैंने तो अपने धर्म के आधार पर बहुत अच्छी साधना की थी, हे परमेश्वर मैं भी क्यों दुख पाया। साहब ने कहा कि सत साधना का ना तो हिंदू धर्म में पूर्ण प्रचार और ना ही मुसलमान धर्म में है, ना सिख धर्म में ना ईसाई में। सत साधना भाई मैं बताऊं मेरी तुम सुनते नहीं, तुम मेरे बच्चे हो सारे, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान सिख या ईसाई किसी जाति या मजहब के, ये तो काल ने तुम्हारे ऊपर एक न्यारा न्यारा एक जुरिडिक्शन बनवा दी और जो तुम्हें दुख का मूल कारण है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम सतलोक में रहते थे भाई और सतलोक से तुम सभी यहां पर अपनी कमजोरी ते आप ही आगे, अब जब तक तुम सतलोक नहीं पहुंचोगे तुम सुखी नहीं हो सकते। ठीक है जिसने हजार वर्ष साधना की है, ओम मंत्र का जाप किया है, वेदों के आधार से वेदों के बिल्कुल अनुकूल किया है साधना, उसको भी परमात्मा प्राप्ति नहीं, यही गीता जी ने प्रमाण दिया है। 11वें अध्याय का 47 और 48 श्लोक में खुद भगवान ब्रह्म काल कह रहा है कि अर्जुन, मेरी प्राप्ति जो रूप मैंने आपको दिखाया है, ये मेरा असली रूप है, काल का वो वास्तविक रूप है। ये ना तो वेदों के अनुसार साधना से प्राप्त हो सकता, ना तप से, ना दान से। इसका प्रतिफल स्वर्ग, महास्वर्ग, राजा और फिर 84 लाख युगें। यही प्रमाण गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि अर्जुन, जन्म मरण ना तो तेरा मिटा और ना मेरा मिटा और ना ही मिटेगा। कर्म के आधार पर ये प्राणी अब भी पैदा है, आगे भी होगा और पहले भी थे हम सभी। और वास्तव में अगर तुझे जन्म मरण से छुटकारा पाना है तो सतलोक उस पूर्ण परमात्मा की साधना करके चला जा। ऐसा ही गीता में लिखा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इस बात को वो सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि उस समय तो वो कष्ट में थे। यहां पर तो कोई नहीं सुनेगा भगवान की बात को, क्यों? यहां तो सभी अपने अपने कर्म आधार पर, कोई सुखी है, किसी के पास कार है, किसी के पास कोठी है, और श्याम ने अपना कोई फीम खाकर सो जा, कोई गुटी दारू की पीकर सो जा है, तड़के सुबह रंधे में लग जा। अब किसी ने परवाह कोई ना कि आगे क्या बनेगी। आगे की जो समस्या है उसको आगाह करने की खातर, उसको बताने के लिए कबीर साहब स्वयं आते हैं या अपने किसी दास की ड्यूटी लगाते हैं और फिर वो साथ रहते हैं। जब जाकर के इस जीव की बुद्धि परमात्मा के अंदर दृढ़ बनती है तो वहां कहते हैं, भगवान हमने तो बहुत पूजा करी। तो कबीर साहब ने कहा कि जो पूजाएं तुमने की उनका लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटेगा। स्वर्ग नरक 84 लाख दुनिया तुम्हारी कभी समाप्त नहीं होंगी, ना वेदों के अनुसार साधना से और ना ही कुरान या पुराण या पवित्र बाइबल के आधार से। मुक्ति होगी पूर्ण संत जो सतलोक का जानने वाला हो, पूर्ण परमात्मा के बारे में जानने वाला हो और उसको आदेश हो नाम देने का। चौथे अध्याय के 33, 34 और 35 श्लोक में गीता जी के भगवान काल ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, उस परम पिता परमात्मा के पूर्ण ज्ञान के जानने वाले संतों के पास जा, उनको नमस्कार कर, दंडवत प्रणाम करें, उनकी सेवा करें और फिर उनसे बिल्कुल भी नम्र होकर उस परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर और उपदेश ले। फिर वो खुश होकर तुझे उस परम तत्व का ज्ञान देंगे, फिर तेरी रुचि यहां से हट जाएगी, तुम पूर्ण मुक्त हो जाएगा। यहां भगवान ने नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। उन संतों को ढूंढ जो परम पिता पूर्ण परमात्मा का मार्ग तत्व से जानते हो और वहां जाकर उनसे फिर वो ज्ञान प्राप्त कर ले, भाई तेरा छुटकारा हो जाएगा। तो मेरा सबसे प्रिय है, इसलिए मैं तुझे ये बताऊं, ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताई थी, ये बात तो तुझे कह रहा हूं, गीता में भगवान कह रहा है। वो सभी प्राणी जो तपतशिला पर जल रहे थे धर्मदास, वो कहते हैं, भगवान हमने छुटवा लो काल तक, हम तो बहुत परेशान। कबीर साहब कहते अभी क्या है, अभी तो तुम गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे, सूअर बनोगे, ये पाड़ टूटना अभी और बकाया है। तन कहता, भगवान हमने बचा लो, हम पापी प्राणी हैं, हम आपसे दूर हुए, क्योंकि साहब ने सारी कहानी बताई उनको कि भाई तुम सतलोक रहते थे, वहां मेरे पास रहते थे, वहां तुम्हें कोई दुख नहीं था, तुम मरते नहीं थे, वहां पर कोई कर्म दंड नहीं है। अच्छा जी, और यहां तुम भाई अपनी कमजोरी से आप उलझ गए। तो कहते हैं, भगवान हमने बचाओ, हमें ले चलो सतलोक। नहीं भाई, कबीर साहब कहने लगे ऐसे नहीं बनेगा, जब तुम
उस मृत लोक में जाओगे और वहां पर तुम्हें कर्म आधार पर कभी मनुष्य शरीर मिले। जब तुम्हें मनुष्य शरीर मिले और मेरा कोई संत इस सतलोक की महिमा गाने वाला और सतपुरुष का मार्ग बताने वाला जब मिल जावे, उससे सतनाम ले लेना, सतनाम ले लेना, और सतनाम लेकर फिर तुम पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव को एज ए गॉड परमात्मा के सम्मान मानकर उसके चरणों में लगा रहना, फिर मेरा काम है तेरे को यहां से छुटवाना। तब वो कहते भगवान अब के जब उन्हें शरीर मिल गया, ये दाता हम आप ही का भजन करेंगे। मनुष्य शरीर तो बहुत मिले लेकिन इस काल भगवान ने यहां पर सब जीवों को अपना ही ज्ञान दे करके अपने में ही सीमित कर लिया। पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को दिया जो वेदों में और गीता जी में, पर उसके पाने की विधि नहीं दी, वहां पहुंचने का तरीका नहीं दिया। इसलिए ये ज्ञान भी हो गया उन महापुरुषों को वेदों के पढ़ने, उन्होंने कोशिश भी की और क्या करें, जो वर्णित विधि है उसी के अनुसार वो साधना करते हैं, लेकिन उनसे वो साधना करके भी उनको उपलब्धि नहीं हुई। जैसे गीता जी के सातवें अध्याय में, थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं क्योंकि गीता एक ऐसा शास्त्र है विशेषकर हिंदू समाज को अवश्य स्वीकार्य है, वैसे तो ये सभी प्राणी मात्र के लिए होना चाहिए, ये कोई जाति या मजहब का नहीं है। जाति मजहब तब तक बने भी नहीं थे जब गीता जी का ये श्रेष्ठ ज्ञान भगवान काल ने कृष्ण जी के माध्यम से अर्जुन को सुनाया था और बाद में महर्षि वेदव्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया था। उसमें कोई जाति मजहब नहीं था, ये सत्य ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं। महापुरुषों ने सही कहा है कि गीता जैसा ज्ञान नहीं, लेकिन समाज को इसका कति ज्ञान नहीं, इसमें लिखा क्या है। हिंदू समाज में भी गीता के अनुसार 1% साधना नहीं है। इसी का परिणाम हुआ कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले, भगवान ने कहा है कि ये तो दुष्ट आत्मा है, ये मुझे भी परेशान करती है और इस शरीर के अंदर पूर्ण परमात्मा उसको भी दुखी करती है, इनको घोर नरक में डालूंगा। जो शास्त्र के विरुद्ध साधना करेंगे, कोई मंदिर में टाली बजावे, कोई श्राद्ध निकाले, भूत पूजे, पितृ पूजे, देवता पूजे, ये शास्त्र विरुद्ध साधना गीता में लिख रखा, पढ़ के देखो एक बार। फिर क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम नरक में जाना है। हमारे पूर्वज करा करते थे, वो पितृ बन गए, भूत बन गए, हैं? क्योंकि वो यही साधना करते थे जो हम कर रहे हैं, इसलिए वो भूत बने, उनके श्राद्ध निकले। अगर वो सत साधना होती तो वो भूत नहीं बनते, वो स्वर्ग चले जाते, जैसे भी लिखा है। अर्थात वो साधना ठीक नहीं थी, यही गीता प्रमाण देती है। भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितृ पूजनीय पितृ बनेंगे, और देवी देवताओं के पुजारी उनके बंधुआ मजदूर और नौकर लगे, और फिर 84 में गधे बनेंगे, ये देवता भी गधे बनेंगे, क्योंकि अपने कर्म भोग न भोग कर ये वहां से मरेंगे और फिर मृतमंडल में आ जाएंगे। इंद्र का स्वर्ग का राजा भी गधा बनता है। एक समय की बात है, मार्कंडे ऋषि तपस्या कर रहे थे, अपनी साधना कर रहे थे वेदों के आधार पर, और उनकी समाधि इतने समाधिस्थ हो जाते थे, काफी वर्षों से बैठे थे, कि वो ब्रह्मलोक तक घूम आते थे। ब्रह्मलोक भी काल ही का है, उसको महास्वर्ग कहते हैं। इंद्र कैसे बनता है? या तो 100 यज्ञ कर दे, अश्वमेध यज्ञ 100, और उसमें 100 मन देसी घी, कुछ भंडारे में कुछ हवन में, उसमें एक यज्ञ में लगाए। ऐसी ऐसी 100 यज्ञ अगर कर दे तो वो इंद्र की पदवी को प्राप्त करता है। या कोई तपस्या कर ले वेदों के आधार पर, ओम नाम का जाप करता हुआ और तपस्या करके और टारगेट बनाकर कि मैं इंद्र का राज बनूं, इंद्र की पदवी प्राप्त करूं। ऐसे उद्देश्य से अगर कोई तपस्या करता है तो उसको इंद्र की पदवी प्राप्त होती है और प्रेजेंट इंद्र को, वर्तमान इंद्र को पद से हटा दिया जाता है। उस इंद्र की एक और ड्यूटी होती है, यदि तेरे शासन काल में कोई दूसरा इस योग्य बन गया तो तेरे को हटाकर तेरी राज्य छीन कर उसको दे दूंगा, ऐसा भगवान विष्णु उसको बता देता है पहले ही। इंद्र को मालूम हुआ कि एक मार्कंडेय नाम के ऋषि बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, वेदों के आधार पर साधना कर रहे हैं, इंद्र को भय बना रहता है कि कोई मेरी पदवी प्राप्त ना कर दे, उसके तप को खंड करवा देता है। इसी उद्देश्य से उसने एक उर्वशी भेजी अपने स्वर्ग लोक में, एक सुंदर औरत, सारे हार श्रृंगार करके सारी सुविधाएं उसको दे दी। उस उर्वशी ने वहां जाकर कितना सुहावना मौसम बना दिया, मौसम बनाया, ठंडी ठंडी हवा चल रहा है और उसमें महक बढ़ दी और स्वयं वहां पर मार्कंडेय ऋषि से 100 फुट की दूरी पर लगभग और वहां पर अपना गाना और नाचना शुरू कर देती है। इतना सुरीली आवाज और बहुत सुंदर ढंग से वो नाच गा रही है। मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। जब वो खूब नाच कूद कर थकगी, आखिर में क्या किया, नेवस्त्र होगी, नग्न हो जाती है। उसमें मार्कंडेय ऋषि कहता, हे बेटी, हे माई, हे बहन, यहां किस लिए आई? तब वो शर्मिंदा होकर कपड़े पहनकर कहती है, हे मार्कंडेय ऋषि, आप कहां की साधना कर रहे हो? यहां के तपस्वी तो मेरे को देखकर ही बावड़ी बूच हो गए, पागल हो गए, तो ना जाने कहां थी तेरी समाधि। कहता है, जहां मैं समाधि मेरी थी महास्वर्ग में यानी ब्रह्मलोक में, वहां तेरे जैसी तो उनकी पैर धोने वाली दासी थी जो वहां पर नाच रही थी, और तेरे जैसी तो साथ साथ उसके पैर धोने वाली मैं क्या देखूं तेरी तरफ, और तेरे तो कोई सुंदर हो उसने भेज दे जा तेरे इंद्र के लोक मत है। तो वो कहती है कि हे मार्कंडेय ऋषि, इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, अर्थात मेरे से सुंदर उस स्वर्ग लोक में कोई नहीं है। उससे पहले वो उर्वशी कह रही थी कि मैं हारगी तो जीत गया, पर एक बार तो इंद्र लोक में चल, मेरी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो मुझे वहां दुआ करेंगे और मेरी हंसी होगी। अब मार्कंडेय ऋषि कहता है कि जब इंद्र मरेगा जब तू किसने करेगी? कहती है, मैं 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र वरूंगी। तो मार्कंडेय ने तो मालूम था क्योंकि वो तो वेदों के ज्ञाता हैं, गीता जी तो या बाद में लिखी गई और गीता में वही वेदों का जोंका तो वर्णन है, सारांश है, उसमें ये लिखा, वेदों में लिखा है कि जब कल्प अंत होगा ये सभी प्राणी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक के और ये सभी समाप्त हो जाएंगे, स्वर्ग महास्वर्ग नहीं रहेगा, स्वर्ग नहीं रहेगा, एक महाप्रलय आएगी। एक कल्प के अंत में महाप्रलय होती है, ये कल्प के अंत में जो महाप्रलय होती है उसमें 14 इंद्र की का पीरियड समाप्त होता है, 1008 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं, एक ब्रह्मा का दिन समाप्त हो जाता है, इसको कल्प बोलते हैं। तो 14 इंद्र मरेंगे जब तू के करेगी, क्योंकि मरना तो इन्हें भी है। तो क्या बताती है वो उर्वशी, कहती है कि मैं तो गधी बनूंगी और ये जितने इंद्र मैं भोगूंगी ये गधे बनेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि का बेटी, फिर मुझे क्यों ले जाती इसे गंदे स्थान पर, और फिर तुम कहती मेरी इज्जत रह जाएगी, गधी का इज्जत क्या, जब तू आज ही 14 इंद्र वरेगी, गधी का तू आज ही है, और फिर मर कभी गधी बनेगी, फिर इज्जत की भी ठेकेदारनी बन रही तू। इतने में इंद्र आ जाता है। इंद्र कहता है बंद निवास हे परवरदिगार, इंद्र की पदवी ले लो, हम हार गए तुम जीत गए। मार्कंडेय ऋषि कहता रे इंद्र, अरे बौड़े तू क्या देना चाहता मुझे? इंद्र, इंद्र का राज यानी स्वर्ग का राज मेरे लिए तो कागज की भीट से भाई। और एक बात सुन, तुझे मालूम है तू गधा बनेगा, और छोड़ इस राजपाट न बावड़े, ला तुझे सत भक्ति बताऊं ब्रह्म लोक की, वहां पर करोड़ों कल्पों तक रहेगा तू, और ये तो मर जाएगा थोड़े से दिन में। अब इंद्र क्या कहता है, अब ऋषिवर एक कमन लेन दमोद सी, फिर देखी जाएगी, फिर के देखेगा गधा अपने पास पागल, फिर तो कुमार देखेगा ढाई मन का बोरा कड़मा लठ लागेंगे। देखना तीर था जब संत कहते तो छोड़ इस बीमारी नर आ मेरी शरण में। इस इंद्र से तो हजार गुण यानी ब्रह्मा विष्णु में इसकी साधना से तो हजार गुणी अच्छी इस ब्रह्म साधना है, भगवान काल की साधना है। जो गीता में भी ऐसे लिख रहा क्या कि अर्जुन इन तीनों देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश की यानी तीनों गुणों की भक्ति छोड़ दे और इनसे जो तुमने लाभ मिला उसने भूल जाए, ये कति असार है, ये बहुत अक्षीणिक है, और तुम मेरी शरण में आ जा। भगवान कहता है, फिर कहता है कि मेरी भी छोड़ दे, जब तुम्हें कति मुक्ति चाहिए तो फिर उस परमात्मा की शरण में चला जा, तेरा फिर मरण नहीं होगा। वो परमात्मा कबीर साहब है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वहां जाने के बाद फिर जीव का मरण नहीं होता। अब यहां कोई बूटी लाव है, अच्छी कोठी हो, कार हो, और उसमें कोई कह दे छोड़ दे बीड़ी दारू सुलफा भाई, क्या दे रहा इसमें ले लो बदल भक्ति, फिर देखेंगे इतना मौज मारने दे। किसी को छेड़ ले, कोई राजा है उसको समझा दे भाई भगवान की भक्ति बनाई और राजपाट जूठा है, तो वह नौकर ना के फिर देखेंगे इतना अच्छा मौज हो रही है, या फिर देखेंगे ना या लेकर डूबे जीव ने। इंद्र को भी यही ले मरी ना मान्या, अकजाब कब्बर कुए में पड़ के। तो यहां के बताना चाहते हैं बंदी छोड़ कबीर साहेब और गरीबदास जी ये विवरण देकर कि जिस स्वर्ग क्या आशा लाकर तुमने स्वर्ग स्वर्ग करके मुंह का थूक सुखा लिया, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग गए हमारे देवता पिताजी, कहते वो स्वर्ग तो एक अन्य का भी कोना, एक नए पैसे का नहीं है, जीव को सबसे बड़ा धोखा ये स्वर्ग है। तो यहां हम के बताना चाहूं आपको कि सतगुरु महाराज यही बताते हैं कि जो साधना तुम कर रहे थे नादान, वह ठीक नहीं थी, इसी कारण तो तुम अच्छे साधक भी यहां तपत शिला पर जलाए जा रहे हो। और अभी के देखिए थोड़े से दिन तो तुम्हें स्वर्ग रखेगा, कोई महास्वर्ग का अधिकारी है वहां भी रख देगा, और फिर बेटा अंत में तुम समय सभी 84 में जाओगे, और ये देवता लोग भी गधे बनेंगे और उनके पुजारी की तो जाएंगे, फिर कहां रहेंगे वह। अब वहां तो वो क्योंकि फंसे पड़े थे, सारी स्वीकृति दे थे, कहा जी ठीक है महाराज हुक्म आपका, और यहां अंत्य आंडी पाक दिया हम क्योंकि नहीं नहीं हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। भाई ठीक कर रहे हो तो या तो शास्त्रों से मिलाओ उनको, शास्त्र में आपको बार बार बताता हूं तीन लोक का ब्रह्म तक की साधना का गीता जी और वेद, अन्य नहीं। उपनिषद ये अपनी अपनी अनुभूति, अपना सब अनुभव, उन ऋषियों ने जितनी अचीवमेंट हुई, जितनी उपलब्धि हुई, उसका विवरण हुआ, वो पूर्ण नहीं है। उपनिषद भी पूर्ण नहीं है, गीता और वेद परिपूर्ण है। इसमें जो साधना गीता और वेद में केवल ब्रह्म प्राप्ति की है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का विवरण जरूर है, जानकारी अवश्य है, लेकिन उसको पाने की, वहां जाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। वो कबीर साहब ने पूरा किया उस शास्त्र को, सूक्ष्म वेद तक साहेब का ज्ञान जो है सूक्ष्म वेद कहलाता है। ये सूक्ष्म वेद जो मैं आपको 5 दिन में सुनाऊंगा, और साथ में क्योंकि हमारे समाज में अपने जो यहां के शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए साथ कंपेरेटिवली तुलना के साथ साथ वो भी सुनाना पड़ता है, तुलनात्मक बनते हैं, क्योंकि हम किसी जैसे जीरो का बल्ब पहले देखा है, उसमें 100 का जला देंगे तो जीरो और 100 के का फिर भेद पता लग गए, नहीं तो अंधेरे में तो जीरो का भी बहुत चानना दिख है और 40 वाट का भी बहुत बढ़िया जगमगाता दिख है, और फिर सूर्य उदय हो जाए तो देखा ये 1-1 हजार की ट्यूब लग रही है, ये भी कोई खास महत्व नहीं रखती। तो कहते हैं तारा मंडल बैठ के चंद बड़ाई खावे, उदे भया जब सूरज का सो तारा छिप जावे। रात्रि के समय तारों के अंदर चंद्रमा की बहुत शोभा होती है, बहुत ज्यादा प्रकाश नजर आवे, और जब सूर्य उदय हो जावे ना चंद्रमा दिखे ना सितारे दिखे। कबीर साहब का ज्ञान जब अपना हो जाएगा फिर ये नमन, ये नीचे की जो साधना है, जो वेद और गीता आपको ऐसे फीकी हो जाएंगी जैसे सूर्योदय होने के बाद ये लाइट। लाइट है, बहुत कुछ काम करेगी रात्रि में, बिल्कुल ना से तो ये बहुत अच्छी है, यानी वेद और गीता। लेकिन कबीर साहब के ज्ञान के सामने ये ऐसे हो जाएंगी जब तुमने सही ज्ञान होगा। इसी का प्रमाण चौथे अध्याय मैंने आपको बताया, यही कहा भगवान ने कि जब तुझे पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो यूं सोच ले अर्जुन। ये दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है कि जब तुझे पूर्ण परमात्मा का तत्व ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, तत्व का ज्ञान होगा, उस समय तेरी आस्था इन ब्रह्मा विष्णु महेश में ऐसी रह जाएगी जैसे बड़े तालाब के मिल जाने पर जो परिपूर्ण कतिफुल और सुंदर जल हो जिसमें को प्राप्त हो जाने पे, और छोटे से तालाब जो गदला सा पानी में जिसमें गुजारा कर रहे थे, जिसी श्रद्धा तेरी उसमें रह जाएगी ना छोटे तालाब में जलाशय में, ऐसी पूर्ण जलाशय का प्राप्त हो जाने पे फिर तेरी श्रद्धा देख ले तो उस जोड़ का तालाब की तरफ देखे भी नहींगा, जो छोटा सा थोड़ा सा पानी गदला सा पानी हो, और जब पूर्ण फुल फ्लैज यानी पूरी लेक दिखाई देगी मिल जाएगी फिर वहां कोई ना जाओ उस गंदे छोटे थोड़े पानी में। ऐसे ही जब तुझे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा अर्जुन, ये ब्रह्मा विष्णु में इस तरह इतने फिक्के लगेंगे। ये गीता के दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक पढ़ के देख लियो, और 45वें ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा छोड़ दे भाई, एक अन्य की भी कोई ना, तीनों गुणों की साधना बंद कर दे, गीता में लिख रखा। और यू ज्ञान समाज ने 1% भी नहीं दे रखा कि भगवान ने गीता में क्यों लिख रखा। तो भाई मेरा तो कलेजा न्यू धड़कन लगा कि भगवान कहे कुछ, गीता हमें के बताओ और समाज कांड ले दो है। इसलिए इस दास ने प्रार्थना करी, परमात्मा इस जीव को आपके दास को कुछ शक्ति दे, मैं कुछ गुण गाऊं आपके। तो दाता ने यह कृपा करी और इस तुष्ट जीव को इस योग्य बनाया कि उस परम पिता पुत्र परमात्मा की हम महिमा गान के योग तो नहीं थे, पर उन्होंने अपनी शक्ति प्रदान करके ये थोड़े से गुणगान बहुत ही कम उस मालिक के हम गा पाते हैं। उसकी महिमा अंत है, उसका कोई अंत नहीं, और उसकी महिमा कोई गा भी नहीं सकता। हम तो एक छोटे से चिराग समझो, फिर भी अंधेरे में चांदना बहुत हो जाएगा। अब वो सारे सुन रहे हैं क्योंकि वो तो वेदों के मर्मज ज्ञाता भी वहां जल रहे थे, क्योंकि भगवान देवता ने खावा लख आप तक है, ऋषियों को भी खावा, वो तपस्या पर घूम रहा है। इतने में भगवान कहता भाई जब तुम्हें कोई मनुष्य शरीर मिल जाए तो मेरी शरण में आ जाना, ऐसे मैं नहीं कर सकता, मैं चाहूं तो इस सारे किस ब्रह्मांड को आग लगा दो और तुम मैं ले आऊं सभी को, पर मैं भाई वचनबद्ध ला लो या थारी आप बेकूफी से तुम फंस रहे हो। अब इसका तरीका इसने मेरे से यही मांगा था काल में कि भगवान आप अपना ज्ञान दो, मैं अपना दूंगा, जो तेरे हो गए आपके और जो मेरे मेरे ज्ञान में रहेंगे वो मेरे, ऐसे चलेगा। अब ठीक है भगवान, इनका जब उन्हें शरीर मिल गया तो हम अवश्य आपकी पूजा करेंगे। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं, और अभी दिखाता हूं तुम्हारे को वो निराकार भगवान, जिसको किसी से बात कर ले वो तो निरंकार है, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो काल भगवान वो ब्रह्म ऐसे स्थान पर रहता है वहां कोई ब्रह्म साधना का उपासक नहीं जा सकता, वहां केवल कबीर साहब का सत्य उपासक, वो सुख की फीत कबीर साहब की लगाने वाला भी नहीं जा सकता। पूरे